नमस्कार मित्रों, रेडियो मधुबन पे सबका स्वागत है। मैं लीना महेंद्रे उपस्थित हूँ। मार्च का महीना निकट आ गया है, सबको पहली चिंता है पढ़ाई की, परीक्षा की। तुम्हें डर तो नहीं लगता ना परीक्षा से? तो मित्रों, हमने ये सोचा कि रेडियो मधुबन के माध्यम से पढ़ाई को थोड़ा सा आसान किया जाए, तुम्हें थोड़ा सा हिंदी और संस्कृत व्याकरण ही पढ़ा दिया जाए। चलो आज से हम ये पढ़ाई शुरू करते हैं और रोज ही पढ़ा करेंगे, बस 5-10 मिनट। और एक रहस्य की बात कहूँ तो इससे तुम्हें परीक्षा में नंबर भी अच्छे आएंगे। आज पहला दिन है तो सबसे पहले हम फटाफट कुछ संस्कृत वाक्य पढ़ लेते हैं जिसमें अहम और त्वम का प्रयोग है। अहम अर्थात मैं, त्वम अर्थात तुम। अहम गच्छामि, त्वम आगच्छसि। मैं जाती हूँ, तुम आती हो। अहम खादामि, त्वम पिबसि। मैं खाती हूँ, तुम पीती हो। अहम चलामि, त्वम धावसि। मैं चलती हूँ, तुम दौड़ती हो। अहम पठामि, त्वम वदसि। मैं पढ़ती हूँ, तुम बात कहती हो। अहम नमामि, त्वम प्रति नमस्कारम करोसि। अर्थात मैं नमन करती हूँ और तुम प्रति नमस्कार करती हो। तो मित्रों, तुमने देखा कि दो दो ही शब्दों से ये सारे वाक्य बने हैं और क्रियापद जो यहाँ उपयोग में लाए गए हैं उसमें अहम के साथ अलग रूप हो जाता है और त्वम के लिए अलग रूप हो जाता है। अहम नमामि, अहम पठामि, अहम चलामि, अहम गच्छामि, अहम खादामि, ये सारे अहम के साथ लगने वाले रूप हो गए। जबकि त्वम आगच्छसि, त्वम पठसि, त्वम वदसि, त्वम धावसि, ये सारे त्वम के साथ लगने वाले क्रियापद के रूप हो गए। तो अब आज पहला दिन है तो हम सबसे पहले ये समझेंगे कि व्याकरण में हमें पढ़ना क्या क्या है और कैसे। हम आपस में बातचीत करते हैं ताकि हम एक दूसरे की बात को, एक दूसरे के मन की भावनाओं को समझ सकें, एक दूसरे से कुछ जानकारी हासिल करें, ज्ञान हासिल करें, है ना। तो ये जो बातचीत हम करते रहते हैं इसे हम कहते हैं भाषा। और भूगोल के हिसाब से भाषाओं में थोड़ा बहुत अंतर भी आता है। जैसे हम अगर हिंदी में बात कर रहे हैं, कोई राजस्थानी में बात करेगा, कोई बंगाली में बात करेगा, कोई अंग्रेजी में बात करेगा, तो भाषाएं भी अलग अलग होती हैं। अर्थात उन भाषाओं के नियम भी होते होंगे। लेकिन भाषा का मूल क्या होता है? भाषा का मूल होता है ध्वनि, अर्थात जो हम अपने कंठ से आवाज़ निकालते हैं। और हर ध्वनि किसी न किसी बात को जाहिर करती ही है। अगर हम ध्वनियों को ध्यान से सुने तो वो भी हमें कुछ कुछ कहती हैं। ध्वनियों की भाषा सीखने के लिए तो बहुत प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन जब हम ध्वनि को भाषा में बांध देते हैं तो सीखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। हम बात करते हैं और एक दूसरे की बातों को समझते हैं। अब ध्वनि से आगे आते हैं अक्षर और शब्द और वाक्य। वाक्य क्या है? शब्दों का समूह है। जैसे मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हें समझ में तो आ गई कि मैं क्या पूछ रही, लेकिन ये जो बड़ा वाक्य बना तुम्हारा नाम क्या है, इसमें 4 शब्द हैं और हर एक शब्द का अपना अपना स्थान है, अर्थ है और भावनाओं को प्रकट करने की अपनी अपनी क्षमता भी है। शब्दों के बाद हम आते हैं अक्षर पर। अक्षरों के समूह को शब्द कहेंगे। जैसे मैंने एक शब्द कहा समूह, इसमें 3 अक्षर हैं, स, मु और ह। और जब हम संस्कृत की बात करेंगे तो अक्षरों का भी हम 2 तरह से वर्गीकरण करते हैं। एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। तो स्वर को हम व्यंजन के साथ जोड़ करके उसका रूप थोड़ा सा बदल देते हैं। जैसे अ आ ई ई उ उ रु रुल रुल रु ए ऐ ओ औ अम अहा। इस प्रकार 16 स्वर हैं और इन स्वरों को हम व्यंजनों के साथ जोड़ देते हैं। और व्यंजन हुए क से लेकर के ज्ञ तक, क ख ग घ ङ च छ ज झ य, इस प्रकार। तुम्हें अगर व्यंजनों को याद करना हो तो एक बड़ी सुंदर सी कविता मैंने बनाई है, उसे बाद में सुनाती हूँ। तो कई बार मन में प्रश्न आता है कि जब हम एक दूसरे से बात करके एक दूसरे की बात को समझ ही लेते हैं और इस प्रकार भाषा का हम बड़ा अच्छा उपयोग रोज कर ही लेते हैं, फिर इस भाषा में व्याकरण सीखने की जरूरत क्या है? तो इसे ऐसे समझो कि माँ ने रोटी बनाई और हमने खा ली। अब हम जैसे बड़े होते चलते हैं, माँ कहती है कि बेटे रोटी बनाना सीख ले, काम आएगी। और समझो कि एक दिन तुम्हें लगा कि अच्छा चलो सीख ही लेते हैं, तो तुम पहले माँ से पूछोगे कि अच्छा रोटी बनाने के लिए क्या तरीका होता है। तो तरीका माँ बताएगी, आटा गूंथो, फिर उसके गोल गोल पेड़े बनाओ, उसे बेलन से बेल करके पतला करो, फिर उसे तवे पर सेको। ये हो गई सारी पद्धति। अब समझो कि माँ ने तुम्हें पद्धति सिखाई नहीं, केवल हाथ पकड़ करके करवा लिया तुमसे, तो भी रोटी तो बन ही जाएगी, लेकिन हाथ पकड़ करके करवाना भी पद्धति सिखाने का एक तरीका होता है। पद्धति तो सीखनी ही पड़ती है, उसे टाला नहीं जा सकता है। भले ही माँ तुम्हें कह करके पद्धति सिखाए या हाथ से पकड़ करके करा करके सिखाए। तो व्याकरण भी एक पद्धति है, भाषा की बातों को समझने की एक पद्धति। और यदि हम इसे सीख लेते हैं तो हमारी गलतियों की संभावना कम होती है। इसीलिए किसी भी भाषा को सीखने के साथ साथ उसके व्याकरण को सीखा जाता है, ताकि भाषा के बोलने में गलतियों की संभावना न हो। और संस्कृत में ये बड़ा ध्यान दिया जाता है कि गलती बिल्कुल भी ना हो, इसलिए संस्कृत सीखने वालों को कहते हैं कि बच्चे व्याकरण तो सीख ही लो, ताकि गलती की कोई संभावना न रहे। तो आज के व्याकरण में हमने सीखा ध्वनि, अक्षर, शब्द, वाक्य। और ध्वनियाँ कई तरह की होती हैं, गाय रंभाती है, चिड़िया चहचहाती है, बादल गरजते हैं, रेलगाड़ी चलती है, साइकिल की घंटी बजती है, मेढक टर्राते हैं, भौरे गुनगुनाते हैं, हम टेबल थपथपाते हैं, ये सारी ध्वनियाँ हैं। और जब ध्वनि का एक खास तरीके से उच्चारण किया जाता है तो फिर उससे ऐसे शब्द बनते हैं जो मनुष्य को एक दूसरे के साथ बात करने के लिए सुविधा उत्पन्न करते हैं। और हाँ, तुम्हारे लिए आज एक मौका दे रहे हैं, जिन क्रियापदों के पीछे मैंने अहम लगा करके वाक्य बनाया है, उनके पीछे त्वम लगा करके और उस क्रियापद का रूप बदल करके तुम नए वाक्य बनाओ और उन वाक्यों को अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड करके हमारे पास भेज दो, तो देखते हैं कि कितने बच्चे सही वाक्य बना सकते हैं, उनके नाम हम घोषित करेंगे। और झट से एक बात और सीख लेते हैं, किसी वाक्य में जो शब्द हम प्रयोग में लाते हैं उन शब्दों का भी हम अगर वर्गीकरण करते हैं तो उन शब्दों का प्रयोग कैसे किया जाता है ये समझने में आसानी हो जाती है। तो शब्दों का वर्गीकरण इस प्रकार करते हैं, नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, अव्यय, संबोधन इत्यादि। क्रिया या क्रियापद उन शब्दों को कहते हैं जिनसे किसी काम करने का बोध होता है, जैसे मैं चलती हूँ, चलना क्रिया है। और नाम या सर्वनाम होते हैं, उन्हें कर्ता कहा जाता है क्योंकि उन्हीं के द्वारा क्रिया की जाती है। और विशेषण क्या है, तो यह किसी नाम की विशेषता बताता है, जैसे सुंदर फूल, नीला आकाश इत्यादि। तो यहाँ तक तो संस्कृत और हिंदी के व्याकरण में कोई अंतर नहीं है। और आगे भी कई बार तुम देखोगे कि हिंदी और संस्कृत के व्याकरण को एक साथ एक दूसरे से मेल करके पढ़ा जा सकता है, तो समझने में बहुत आसानी होगी। तो हम संस्कृत और हिंदी दोनों के व्याकरण को एक साथ पढ़ते हुए आगे चलेंगे। आज मैं यहाँ रुकती हूँ, कल फिर उपस्थित होती हूँ। तुम सुनते रहो पठामी संस्कृतम, सुनते रहो रेडियो मधुबन, मुस्कुराते रहो। नमस्कार।